समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। आज के संग के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शेफाली सिंह। नमस्कार शेफाली।
हेलो देवेंद्र एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। So this, with this beautiful Saturday morning, let's usher in a weekend of great fun, enjoyment, or perhaps a time of finishing pending tasks, and also a period of some good rest, so that we can take a pause in life and recharge our batteries for a new week coming ahead.
Jee.
So today we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, where in the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 8th June 2024. So let's begin with the headlines.
जी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनके नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और मौका दिया है और ये 18वीं लोकसभा नई और युवा ऊर्जा का सदन है। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इससे पहले एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है।
Delhi police has prohibited flying of sub-conventional aerial platforms including paragliders, paramotors, hang gliders, unmanned aerial vehicles, UAVs and hot air balloons over Delhi during the swearing-in ceremony of Narendra Modi as Prime Minister. The ban will remain in place on the 9th and 10th of this month.
जी, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। चंद्रबाबू नायडू वर्ष 2014 में तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य के विभाजन के बाद 2014 में नए बने राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। एनडीए के सहयोगी दलों तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 175 विधानसभा सीटों में से 164 पर जीत दर्ज की है।
Election Commission has decided to accept applications from political parties seeking allotment of common symbol for general election to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir with immediate effect. The Supreme Court had directed the poll panel last December to hold assembly elections in Jammu and Kashmir by 30th September. Registered unrecognized parties have to apply for common symbol to field candidates for polls. In Chhattisgarh, 5 Maoists were killed in an encounter with security forces in Bastar Division yesterday. Their bodies have been recovered from the encounter site. Police officers said that the encounter took place on the border of Narayanpur and Dantewada districts. After receiving intelligence inputs about the presence of Maoists in the forest of Gobel, a joint team of District Reserve Guard, DRG, and ITBP had set out on a search operation. During the search operation, the encounter broke out in the jungles of Gobel. 3 jawans of DRG were also injured in the gun battle.
जी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर करेगा, जिस पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक नई चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। एक अन्य मामले में सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगी। उधर अदालत ने कविता की न्यायिक हिरासत को 21 जून तक बढ़ा दिया है।
द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट इन केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र फॉर हेवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। द वेदर एजेंसी हैज फोरकास्ट लाइट रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स ओवर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड राजस्थान टुडे। वाइड स्प्रेड रेनफॉल अकम्पनीड विद थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इज लाइटली ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। सिमिलर कंडीशंस आर ऑल्सो लाइटली ओवर जम्मू कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड टिल टुमारो। आईएमडी फर्दर सेड दैट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड करैकल इज लाइकली ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 डेज। ऑन हीट वेव आईएमडी हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट इन उत्तर प्रदेश। मीनवाइल मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा आर ऑल्सो लाइकली टू फेस सिमिलर कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज। Hot and humid weather is predicted over Bihar, Gangetic, West Bengal and Jharkhand for next 2 days.
एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 में भारतीय हॉकी टीम के 2 मैच शेष हैं। अपने अभियान के शानदार समापन के लिए जर्मनी के खिलाफ और रविवार को लंदन में मेजबान ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय टीम उतरेगी। पुरुष टीम अंक तालिका में हॉकी टीम चौथे स्थान पर है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक 14 मैचों से 24 अंक जुटाए हैं। इस बीच उसके प्रतिद्वंदी जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर हैं, जिन्होंने एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 में अब तक 7 मैच खेले हैं।
More from the sports news. In the French Open tennis men's singles semi-final match, Carlos Alcaraz Garcia of Spain defeated Yannick Sinner of Italy at Roland Garros last night. Carlos Alcaraz reached his first French Open final by beating Yannick Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3, making the 21-year-old from Spain the youngest man to reach a Grand Slam title match. In the second semi-final later, fourth-seeded Alexander Zverev of Germany reached in the final by beating seventh-seeded Casper Ruud of Norway. In the final, Alcaraz will face Alexander Zverev tomorrow. On the other hand, the women's singles final will be held today between top-seeded Iga Swiatek of Poland and Italy's Jasmine Paolini.
न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला,
जब होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने।
आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल
सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर।
तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपने सुनी, कुछ खेल खबरें और मौसम की खबरें भी सुनी, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महानगरों के मौसम की। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में कैसा रहेगा, क्या है खबरें बताएंगे शेफाली।
यस, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। Chennai Airport introduced Digi Yatra system on Friday, with which passengers will be able to enter the domestic terminals and complete the check-in and boarding process using face recognition. The facility will be available for registered passengers in the 2 domestic terminals. Passengers of IndiGo, SpiceJet and Akasa can use it at the T1 domestic terminal. Air India, Vistara and Air India Express passengers can use it at T4 domestic terminal. Thus, state-of-the-art service will ensure smoother and efficient passage for domestic passengers, as it uses face as the ID of passengers and will significantly reduce the time spent in queues at entry gates, pre-security handling areas and boarding gates. Travellers have to install Digi Yatra app on their mobiles to use the service. In another news, TN Skill Development Corporation will hold an entrance examination on July 14 to select eligible candidates to offer 6-month free coaching for competitive examinations conducted by SSCs, SSC, Railways and Banking Sector Recruitment. The coaching with hostel accommodation is being offered for students under Naan Mudhalwan scheme to ensure that more students from the state will get jobs in central government organizations. Interested candidates can apply from 8th June to 23rd June on the website. And now news from Bengaluru. The Southwestern Railway with zonal headquarters in Hubli in North Karnataka has conducted a comprehensive safety inspection to ensure passenger safety during train journeys in the ongoing monsoon season. A media release issued by the zonal headquarters has informed that the inspection of railway infrastructure was carried out in Saklespur, Subramania Road and Castle Rock Kullim stretch passing through ghat sections. The vulnerable sections of the railway lines prone to landslide or flooding have been reviewed and inspected by the section engineers, and watchmen have been deputed at each location for observing water levels, drainage flow, falling of trees on track or any other obstructions to the railway tracks. Muck or garbage from the drainage system in track areas have been cleared to prevent water stagnation. The overhead equipment signals, track electrification and other installations have been cleared of tree stems and branches along with bushes and shrubs that could obstruct rail traffic. Earth-moving equipment are on standby at critical locations to remove boulders falling from hills. Sufficient inventory of torches, diesel, cotton waste, fuses, matchboxes and detonators are maintained. Now news from Hyderabad. Telangana State Irrigation Minister N. Uttam Kumar Reddy has urged the concerned construction companies to expedite the ongoing repair and monsoon flood protection works at the Mitigadda, Annaram and Sundela barrages of the Kaleshwaram Lift Irrigation Project in Jaishankar, Bhupalpalli district. He emphasized the importance of completing these tasks swiftly and efficiently to ensure the safety and functionality of the barrages. The minister said the government is committed to ensure that every rupee invested in irrigation yields positive outcomes. Speaking to the media following an inspection of the Sundela, Annaram and Medigadda barrages, the minister reiterated the government's focus on maximizing new ayakat under irrigation with prudent resource allocation. He emphasized that both old and new irrigation projects will be assessed based on their ability to bring the largest new ayakat under cultivation within shorter time frames and with optimal financial investment. Stating that the government is determined to avoid the misuse of public funds, the minister stated that projects offering greater irrigation potential with minimal expenditure will be given precedence. And in another news, in Telangana, the Congress bagged the graduates' MLC constituency in the by-poll. The Congress candidate in the Nalgonda Khammam Warangal graduates' MLC by-poll, Thinmar Mallana alias Naveen Kumar, won the election in the elimination round against the BRS candidate Rakesh Reddy. In the second priority votes, Rakesh Reddy gave a tough fight against Mallana. However, Mallana won the election even though he failed to reach the magic figure. Mallana dominated from the first round and continued his majority till around 20,000 first priority votes. In the end, the election officer announced that Mallana had won as Rakesh Reddy was eliminated last evening. The by-poll was held on 27th of last month and the counting of votes began in Nalgonda on 5th of this month. Over 4,63,000 electors in 34 assembly constituencies took part in the by-poll. A total of 52 candidates were in the fray. The election was necessitated after P. Rajeshwar Reddy resigned after he got elected to the Legislative Assembly from Jangaon. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Devendra.
Ji. देश और विदेशों में आगामी मेट्रो परियोजनाओं के लिए सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के आरसीएल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों संगठन परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सहायता प्रदान करेंगे। इन परियोजनाओं में मेट्रो, रेलवे, हाई स्पीड रेल, राजमार्ग, मेगा ब्रिज, सुरंगों, संस्थागत भवनों, कार्यशालाओं या डिपो और रेलवे विद्युतीकरण सहित कई आधारभूत संरचना से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। डीएमआरसी ने बताया कि साझेदारी का उद्देश्य डीएमआरसी और केआरसीएल की विशेषज्ञता का उपयोग बड़े पैमाने पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग को बढ़ावा देना है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने योग्यता संवर्धन योजना के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई से दिसंबर के पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि इच्छुक छात्र इस योजना के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों द्वारा कराए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कार्यक्रमों की सूची, पात्रता मानदंड, पंजीकरण और शुल्क आदि के बारे में आवेदक www.admission.uod.du.ac.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष की नीट परीक्षा में राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1414 छात्रों ने सफलता हासिल की है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शिक्षा मंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि पिछले 5 वर्षों में नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या 2.5 गुना हो गई है, जो 2020 में 569 थी। डॉ भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की नीट परीक्षा में सफलता की दर 95% रही। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और बेचे जाने में शामिल सिंडिकेट का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचित किया कि दक्षिणी जिले की टीम ने अपनी जांच और स्थानीय मुखबिरों द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि उनकी जांच के दौरान अपराधियों से 5 पिस्तौल, 8 कारतूस, अपराध में प्रयुक्त एक गाड़ी और अवैध हथियारों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। और मुंबई का रुख करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी जैसी वॉलेट सुविधाओं को ई मैंडेट ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार आरबीआई ऐसे भुगतानों के लिए वॉलेट में स्वतः पैसे जोड़ने की सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि आरबीआई आवर्ती लेनदेन के लिए ई मैंडेट की अनुमति देता है। आरबीआई ने आगे कहा है कि वो प्री डेबिट नोटिफिकेशन को खत्म कर सकता है, जो वर्तमान में ई मैंडेट ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक डेबिट से कम 24 घंटे पहले जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ने हार्बिंगर 2024 परिवर्तन के लिए नवाचार नामक अपनी वैश्विक हैकाथॉन प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण की घोषणा की है। आरबीआई ने 2 समस्या विवरण जारी किए हैं और प्रतिभागियों को प्रौद्योगिकी और नवीन दृष्टिकोण का उपयोग करके समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। पहली समस्या शून्य वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी की वास्तविक समय में भविष्यवाणी, इसका पता लगाने और रोकथाम के लिए समाधान आमंत्रित किए हैं। दूसरा विषय दिव्यांगों के लिए अनुकूलता है, जिसमें केंद्रीय बैंक दृष्टिबाधित लोगों को बैंक नोटों की सही पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए समाधान चाहता है। हार्बिंगर 2024 प्रतिभागियों को उद्योग के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने और एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष अपने अभिनव समाधान प्रदर्शित करने का अवसर देगा। प्रत्येक विजेता को 40 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए fintech.rbi.org.in/ft_harbinger_2024 पर जा सकते हैं। और चलते हैं कोलकाता। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में पिछले एक हफ्ते से लगातार गर्मी जारी है। उमस भरा मौसम बना हुआ है, जबकि उत्तरी बंगाल के भागों में उमस भरी गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। इन उप हिमालयी भागों में मॉनसूनी हवाएं आ चुकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल के जिलों में अगले सप्ताह से बारिश की संभावना है, लेकिन दक्षिण बंगाल में फिलहाल मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा, इससे जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल बताते अपने श्रोताओं को। आज राजधानी और आसपास के भागों में अधिकांश समय आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए आंशिक बादल भी आ सकते हैं। बादलों की गर्जना के साथ आंधी चल सकती है, कहीं पर बूंदे पड़ सकती हैं और अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल कम है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मुंबई में सुबह तापमान 28 डिग्री रहा, दिन में पारा 34 तक जा सकता है। मुंबई में अब घने मॉनसूनी बादल आने लगे हैं, जल्द ही मॉनसून भी दस्तक दे सकता है। कुछ स्थानों पर आज से बारिश बढ़ने की संभावना है। कोलकाता में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन यहां बारिश की संभावना कम है। तापमान की बात करें तो दिन में 38 या उससे भी ऊपर पारा जा सकता है। सुबह के समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और शेफाली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
जी बिल्कुल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विथ मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
जी, आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं. आज के दिन ऐसा क्या कुछ घटा जो हमारे श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है. आज 8 जून है. वर्ष 1936 में आज ही के दिन भारतीय रेडियो सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम मिला था. इससे पहले इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, जिसे 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया. ये नाम कवि पंडित नरेंद्र शर्मा ने सुझाया था. देश में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी. रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ सफर 94 साल बाद देश की 99.18% आबादी तक पहुंच चुका है. और इसी दिन एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई थी. दिन था 8 जून 1948 और मंगलवार रात करीब 11:15 बजे थे. मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट से उड़ा एयर इंडिया का नागरिक विमान 10 जून को लंदन पहुंचा था. मार्टिन एल 749A कॉन्स्टेलेशन एयरक्राफ्ट करीब 5000 किलोमीटर के सफर के दौरान कायरो और जिनेवा में रुका था. विमान में जेआरडी टाटा और जामनगर के नवाब अमीर अली खान सहित कुल 35 लोग सवार थे. विमान को मालाबार प्रिंसेस नाम दिया गया और इसके कैप्टन के आर गुजदर थे. यात्रियों से भारत से लंदन तक के इस सफर के लिए 1720 रूपये लिए गए थे. ये पैसे सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए शेफाली तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी.
बिल्कुल. In 1915, Gita Rahasya, written by Lokmanya Tilak, was published. In 1998, a disaster management cell, DMC, under the direct command of the Air Officer Commanding-in-Chief, Southwestern Air Command, was set up at the Command Operations Room to liaise with the state government and initiate necessary actions. In 1999, ATP announced Pace Bhupati as number one ranked doubles team. In individual doubles ranking, Bhupati and Pace were number one and two respectively.
जी, और वर्ष 2000 में सीरियल चर्च ब्लास्ट केस हुआ था, जिसमें आज ही के दिन कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के सेंट एंड चर्च में दो बम धमाके हुए थे. इसकी जिम्मेदारी दीनदार अंजुमन नामक एक संगठन ने ली थी. इसी संगठन ने आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में भी चर्च में धमाके किए. 9 जुलाई को जगजीवन राम नगर के एक चर्च में धमाका करने के बाद संगठन के आतंकी वैन से लौट रहे थे, तभी वैन में रखे बम फट गए और 3 आतंकियों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक वैन उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही थी, इस वजह से वैन में रखे बम फटे थे. कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट मामले में 23 लोगों को दोषी ठहराया था. और वर्ष 2000 से पीछे चलते हैं. 1953 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वॉशिंगटन के रेस्टोरेंट्स को अश्वेतों को खाना खिलाने से मना करने पर रोक लगा दी थी. और आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है.
All right, so today is the birthday of Dimple Kapadia, an Indian actress predominantly appearing in Hindi films. She was discovered at age 14 by the filmmaker Raj Kapoor, who cast her in the title role of his famous teen romance, Bobby. Shortly before the film's release in 1973, she married the actor Rajesh Khanna and quit acting. However, Kapadia returned to films in 1984. Her comeback film, Sagar, revived her career. Both Bobby and Sagar won her Filmfare Awards for Best Actress. Let's listen to a track from Sagar. While her initial roles often relied on her perceived beauty, Kapadia was keen to expand her range. She was among the first actresses who starred in women-centered Hindi action films, but found greater favor with critics when she took on more dramatic roles in both mainstream and neorealist parallel cinema. For her role as a professional mourner in Rudali, she won the National Film Award for Best Actress and a Filmfare Critics Award. Starting in the mid-1990s, Kapadia became more selective about her work in the following decades. She attained more success with character roles in Dil Chahta Hai, Leela, Being Cyrus, Luck by Chance, Cocktail and Finding Fanny. Some of these roles were cited in the media as a departure from the regular portrayals of women of her age in Hindi films. Roles in the Hollywood thriller Tenet and action film Pathaan brought her further recognition. Let's listen to another of her famous songs from Bobby, Jhoot Bole Kawa Kaate.
Jhoot Bole Kawa Kaate Kaale Kawe Se Dariyo Main Maike Chali Jaungi Tum Dekhte Rahiyo Main Maike Chali Jaungi Tum Dekhte Rahiyo
Tu Maike Chali Jaungi Main Dhanda Lekar Aunga Main Dhanda Lekar Aunga
मशहूर नाटककार निर्देशक कवि और पटकथा लेखक हबीब तनवीर को भी हम आज याद कर रहे हैं। इनकी आज पुण्यतिथि है। तनवीर के मशहूर नाटकों में आगरा बाजार और चरणदास चोर शामिल हैं। हबीब तनवीर ने 5 दशक की अपनी लंबी रंगमंच यात्रा में 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया। शतरंज के मोहरे, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा और राज रक्त उनके मशहूर नाटकों में शुमार हैं। हबीब तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने लोक धर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारतीय रंगमंच को एक नया मुहावरा दिया। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। 1945 में मुंबई गए और आकाशवाणी से बतौर निर्माता जुड़ गए। उसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में गीत लिखने के साथ अभिनय भी किया। उनका एक संवाद हम आपको सुनवाते हैं।
अरे वो तो मैं देख रहा हूँ तू आदमी है, मैं तेरा नाम और काम पूछ रहा हूँ।
तो सुनो, मेरा नाम है चरणदास, मेरा काम है चोरी, दोनों मिला के चरणदास चोर कहते हैं मेरे।
ओहो, तू चरणदास चोर है तो क्या मेरे घर ही उठा कर ले जाएगा?
हाँ, मौका पड़ेगा तो वैसे ही हो जाएगा। अरे ये गरीब मांग रहा है, इसको दे दो।
तुम कह रहे हो इसलिए मैं दे दूँ?
हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए दे दो, नहीं तो तुम्हारे ही घर से सब धान चोरी करके और सब गरीब लोगों में बांट दूंगा।
अपने नाटकों के माध्यम से वो दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें समसामयिक मुद्दों से भी जोड़ते रहे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 8 जून 2009 को इस दुनिया से अलविदा कहा।
Also, I would just like to tell our listeners कि ये जो आपने डायलॉग सुना है वो उनके प्ले चरणदास चोर से है और ये पर्टिकुलर एक्सर्प जो है वो लिया है आकाशवाणी के एक रिकॉर्डेड प्ले से, तो आप चाहे तो आकाशवाणी पे भी सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। Also, I would like to tell our listeners that today is the birth anniversary of Francis Harry Compton Crick, an English molecular biologist, biophysicist and neuroscientist. He's known for his work on the DNA. Ji haan, Francis Crick and James Watson's paper in Nature in 1953 laid the groundwork for understanding DNA structure and functions. Together with Morris Wilkins, they were jointly awarded the 1962 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries concerning the molecular structure of DNA and its significance for information transfer in living material. Crick is widely known for the use of the term central dogma to summarize the idea that the final step in the flow of information from DNA to proteins is irreversible. Also, I would like to tell our listeners that today is the birthday of Sirkazi G. Shivachidambaram. He is a Carnatic music vocalist and cinema playback singer from Chennai. He's also a medical doctor with a postgraduate degree in internal medicine. So it's so wonderful to know that music and science is going hand in hand. And his extemporary rendering on the song of youth empowerment in Tamil, written by Dr. APJ Abdul Kalam during the inauguration of Tamil Isai Sangam Festival in Chennai, was appreciated with a hue and cry. So let's listen to one of the tracks composed by him, Udakara Marimuthu. Also, today is the birthday of Nancy Sinatra, an American singer. She's the elder daughter of the legendary musician Frank Sinatra and is known for her 1965 signature hit, These Boots Are Made for Walking.
You keep saying you got something for me, something you call love.
but confess you've been a messin' where you shouldn't have been.
और इसके साथ ही हम आप सभी से चाहेंगे आज का कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड चैनल.
Stay tuned for coming up next Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.